हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा उसके लिए क्या थी, उसकी माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी। तब विक्रांत अपनी माँ से बोला था, मैंने आपको इस जन्म में कैद से इसलिए छुड़वाया है ताकि आप मेरी मदद करें, ना कि ये कहें कि मैं तारा से दूर रहूं। मुझे तारा का जिस्म हर हाल में चाहिए। अब आपको मेरी अपनी काली विद्या के द्वारा मदद करनी होगी और तारा को मेरी जिंदगी में लाना होगा ताकि मैं उसके साथ रिश्ता बनाऊं। रिश्ता बनाने के बाद उसके बच्चे की जान अपने आप चली जाएगी। अपने बेटे की बात सुनकर राजा बिक्रम की माँ समझ चुकी थी और बोली थी, तू फिक्र मत कर, मैं तारा को इस जंगल में आने के लिए मजबूर कर दूंगी। उसे तेरे पास आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार तारा इस जंगल में आ जाए, उसके बाद तू उसे अपना बना सकता है। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रांत खुश हो गया था और एक बार फिर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया था। वही काली शक्तियों का मालिक अमित अपने बनाए हुए मायावी महल में पहुंच चुका था और यहाँ आकर उसने देखा, मालिका बड़ी ही आराम से उस महल में बने हुए खूबसूरत से स्विमिंग पूल में नहा रही थी। मालिका ने अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री कर लिया था। वो समझ चुकी थी कि विक्रांत कोई बहुत बड़ी शक्ति है और विक्रांत का इस्तेमाल करके वो अमन के जिस्म को पा सकती है, इसलिए उसने विक्रांत पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया था। वो जानती थी विक्रांत जरूर उसकी मदद करेगा। जैसे ही अमित ने मालिका को पुल में अर्धनग्न हालत में देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी खुद को निर्वस्त्र करके उस पुल में चला गया था। अमित के पुल में से निकलने के बाद मालिका ने खुद को देखा था, जहां उसके जिस्म पर अब अमित के किस करने के निशान बन चुके थे, क्योंकि अमित उसे किसी नहीं कर रहा था बल्कि उसके जिस्म के हिस्से को काट भी रहा था, जिससे मालिका को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था और कितनी ही जगह से तो काला काला सा खून निकलना भी शुरू हो गया था। मालिका के अंदर काला साया था और उसके अंदर का खून बिल्कुल भी प्योर नहीं था। उसके अंदर जो खून था वो एकदम काला था, तो जब जहां अमित ने उसे बाइट किए थे वहां से काला काला खून आना शुरू हो गया था। तब मालिका ने जहां जहां अमित ने उसे किस किया था बड़ी ही बेदर्दी से खुद को रगड़ा था, मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपने जिस्म से अमित की छुअन को पूरी तरह से मिटाना चाहती हो। उसने तो सोचा था कि उसका पीछा अमित से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो समझ चुकी थी अमित अब हर रोज किसी न किसी बहाने से उसे इसी तरह से परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। भले ही वो उसके साथ पूरी तरह से फिजिकल ना हो, लेकिन इस तरह से किस करना भी फिजिकल दुख देने से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दूसरी ओर तारा परी जैसे ही तैयार होकर नीचे आई, उसने देखा करिश्मा जी की आंखें काफी ज्यादा लाल हुई हुई थीं। तारा परी करिश्मा जी को इस तरह से आंखें देखकर हैरान हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि करिश्मा जी कुछ ज्यादा ही रोई हैं। तब वो करिश्मा जी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली थी, क्या हुआ मॉम, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या आप रो रही थीं? बताइए मुझे क्या बात है और किसने आपको रुलाने की हिम्मत की है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तारा ने बड़ी ही मोहब्बत से करिश्मा जी से पूछा था। तब करिश्मा जी तारा की बात सुनकर अपनी आंखों को मसलते हुए उसकी ओर देखते हुए बोली थी, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भला किसी की हिम्मत है कि तुम्हारी मॉम को परेशान कर सके? वो तो बस मुझे, तुम तो जानती हो ना, मुझे अमन के पिताजी की कितनी याद आती है, तो उनकी याद आ रही थी तो इसलिए आंखों में आंसू आ गए थे। करिश्मा जी की बात सुनकर न जाने क्यों तारा को लगा था कि करिश्मा जी झूठ बोल रही हैं और वो अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि तभी उसे अमन दिखाई दिया था। अमन को देखकर तारा खिल उठी थी, उनके पास जाकर खड़ी हो गई थी। अमन भी तारा को ही देख रहा था कि कुछ देर पहले उन दोनों में कितनी ही देर तक ताबड़तोड़ प्यार हुआ था। वो दोनों उसे याद करकर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगे थे, लेकिन आज अमन का दिल बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। उसे रह रहकर अब अपनी प्यारी बीवी तारा की चिंता सता रही थी और उसे वो ये बात बता भी नहीं सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था तारा के ऊपर जो इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अगर इसका पता तारा को लगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और इससे होने वाले बच्चे पर भी फर्क पड़ सकता है। तो ये सोचकर अमन ने तारा को कुछ भी ना बताने का डिसीजन ले लिया था। और जबकि आंखों ही आंखों में करिश्मा जी ने भी ये बात अमन को अच्छी तरह से समझा दी थी। तब करिश्मा जी बोली थी, अरे अरे बेटा, अब तुम उठी गई हो तो फटाफट से नाश्ता कर लो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। और ये पता नहीं सुबह सुबह आज विक्रांत कहाँ चला गया है। कल रात गार्डन में जो उसकी जीभ में जख्म हुआ था, उसके बाद से मैं उससे मिली ही नहीं हूँ और जब मैं उसके कमरे में गई थी तब भी वो कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का बिना बताए कहाँ जा सकता है।
और न ही उसने रात को डिनर किया और न ही अब सुबह का नाश्ता किया। करिश्मा जी की बात सुनकर अमन हैरानी से उन्हें देखने लगा था और बोला था, अच्छा मॉम, क्या विक्रांत कल रात से घर पर नहीं है? मेरा भी उसकी ओर नहीं गया था और कल रात उसकी जीभ में जो चोट लग गई थी मैंने उसका भी उसे हालचाल नहीं लिए। शायद इसी बात से गुस्सा होकर वो कहीं चला तो नहीं गया। ओ मॉम, आप भी ना मुझे अब बता रही हैं, न जाने मेरा दोस्त कहाँ होगा, अमन ने विक्रांत की चिंता करते हुए कहा था। अमान की बात सुनकर तारा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था और बोली थी, हाँ हाँ अमन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी विक्रांत जी को नहीं देखा है और न ही उनके हालचाल पूछे कि आखिर उनकी तबीयत अब कैसी है ये कैसी नहीं है। तारा की बात सुनकर अमन ने उसे कहा था, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, हम साथ में ऑफिस जाएंगे। वैसे भी 3 दिन की छुट्टी ऑलमोस्ट पूरी हो ही चुकी है और आज 4th दिन है, तो आज के लिए मैं ऑफिस खोलेगा और उसके बाद मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए 7 दिनों के लिए बाहर भी जाना है। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही तारा ने ये सुना वो हैरानी से अमन की ओर देखने लगी थी। तारा को इस तरह से अपनी ओर देखा हुआ देख अमान ने अपनी आंखें झुका ली थी, क्योंकि वो तारा से साफ साफ झूठ बोल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो तारा से कभी कुछ भी झूठ बोलेगा, लेकिन ये बोला गया झूठ सिर्फ और सिर्फ तारा की भलाई के लिए ही था। तब करिश्मा जी तो अमन की बातों का मतलब समझ गई थी, लेकिन तारा को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर अचानक से अमन 7 दिनों के लिए कहाँ जाने की बात कर रहा था। तारा कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गई थी और तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। जय श्री राम।